नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के एक बहुत ही कह सकते हैं प्रेरक उद्बोधन पर बात करने वाले हैं।
जी, बोना और काटना।
हाँ, बोना और काटना, ये हमें कर्म और उसके फल, मतलब जो हम करते हैं और जो हमें मिलता है, उस सिद्धांत पर एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है और ये पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरु से सीखा था।
बिल्कुल,
तो चलिए इसका थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं।
हाँ, तो इसकी शुरुआत होती है, पूज्य गुरुदेव याद करते हैं करीब 60 साल पहले की बात, जब वो अपने गुरुदेव से मिले थे।
अच्छा।
और गुरुदेव ने उन्हें, देखिए, पात्रता मतलब एक तरह से योग्यता विकसित करने के लिए एक बड़ा कठिन निर्देश दिया था।
क्या निर्देश था?
उन्होंने कहा कि 24 साल तक जौ की रोटी और छाछ पर रहना है।
24 साल?
हाँ, और साथ में 24 लाख गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करना है, मतलब एक बहुत ही गहन साधना है।
ये तो बहुत बहुत कठिन तपस्या है।
बिल्कुल, लेकिन देखिए, इसी कठिन साधना के साथ ना गुरुदेव ने एक और बहुत ही बुनियादी पर शायद उससे भी ज्यादा जरूरी सिद्धांत सिखाया।
और वो क्या था?
वही, बोना और काटना।
बोना और काटना, सुनने में तो खेती जैसा लगता है।
हाँ, लगता है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा था। गुरुदेव का उपदेश देखिए बिल्कुल सीधा था, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भगवान के खेत में बो दो, वो 100 गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा।
100 गुना?
हाँ, और कहा कि यही है सच्ची रिद्धि सिद्धि, मतलब असली समृद्धि और सफलता का रहस्य। ये कोई फोकट में मिलने वाली चीज नहीं है।
सही बात है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये एक प्रक्रिया है, जैसे किसान बोता है तभी तो काटता है ना।
हाँ बिल्कुल।
तो फिर यहाँ ये बोने का मतलब क्या था, मतलब किन चीजों को बोने की बात हो रही थी?
हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। पूज्य गुरुदेव समझाते हैं कि उनके गुरु ने मुख्य रूप से 3 ईश्वर की दी हुई चीजों को बोने को कहा।
अच्छा, कौन सी 3 चीजें? देखिए, पहली चीज है हमारा समय और श्रम, मतलब जो हमारा ये स्थूल शरीर है, हमारी मेहनत,
ठीक है,
इसे कहाँ बोना है? समाज रूपी विराट भगवान की सेवा में, मतलब समाज को ही भगवान का रूप मानकर उसकी सेवा में लगा देना है।
समाज सेवा में।
जी। फिर दूसरी चीज है हमारी बुद्धि, जो हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है,
हमारी सोचने समझने की शक्ति।
बिल्कुल। तो इसे अपने अहंकार के लिए या फालतू की इच्छाओं वासनाओं में लगाने के बजाय ईश्वर के काम, मतलब अच्छे कामों के चिंतन में, उनकी योजना बनाने में लगाना है।
अच्छा, मतलब बुद्धि का सही इस्तेमाल।
सही इस्तेमाल। और तीसरी चीज जो भगवान ने दी है वो है हमारी भावनाएं, जो हमारे कारण शरीर से जुड़ी हैं।
भावनाएं जैसे प्रेम, करुणा।
हाँ, ये सब। तो इन्हें भी अपने स्वार्थ से हटाकर ईश्वर के प्रति, मतलब परमार्थ के लिए समर्पित करना है। ये तीनों चीजें भगवान की देन है, तो इन्हें भगवान के ही काम में, मतलब अच्छे कामों में लगाना है।
समय, बुद्धि और भावनाएं, ये तीनों ईश्वर प्रदत्त हैं।
जी। और फिर एक चौथी चीज नहीं बताई।
चौथी चीज, वो क्या?
वो है धन, पैसा। अब ये सीधे तौर पर ईश्वर प्रदत्त नहीं माना जाता, क्योंकि ये हम कमाते हैं या हमें विरासत में मिलता है।
हाँ, ये तो हम अर्जित करते हैं।
सही का। तो गुरुदेव ने इसे भी, मतलब धन को भी, पूरी तरह भगवान के खेत में बोने की सलाह दी। ये विश्वास दिलाया कि ये भी कई गुना होकर लौटेगा,
अपना कमाया हुआ धन भी। ये सुनने में तो बहुत बहुत ज्यादा आदर्शवादी लगता है। क्या पूज्य गुरुदेव ने इसे सच में, मतलब अक्षरशा, अपने जीवन में उतारा? कोई उदाहरण है इसका?
अरे बिल्कुल, यही तो पूज्य गुरुदेव की महानता है। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं बल्कि जी कर दिखाया।
अच्छा,
कैसे? उन्होंने खुद बताया कि जो पिता से संपत्ति मिली थी, फिर जमींदारी खत्म हुई तो उसका मुआवजा मिला। यहाँ तक कि उनकी धर्मपत्नी का करीब 60 तोला सोना था, वो सब कुछ।
60 तोला सोना?
हाँ, सब कुछ उन्होंने गायत्री तपोभूमि जैसे संस्थान बनाने में लगा दिया। वो उसे भगवान का कार्य क्षेत्र मानते थे।
तब कुछ लगा दिया,
सब कुछ। और सुनिए, बाद में उनके पास कोई 80 बीघा जमीन बची थी गांव में।
जी।
उसे भी उन्होंने अपने गांव आंवला खेड़ा में एक हायर सेकेंडरी स्कूल और एक अस्पताल बनवाने के लिए दान कर दिया। वो हमेशा जोर देकर कहते थे कि विरासत में मिले धन का एक अंश भी उन्होंने अपने निजी काम में नहीं लिया, सब परमार्थ में बो दिया।
अरे बाप रे, ये तो सचमुच असाधारण समर्पण है। फिर नतीजा क्या हुआ इसका? क्या उन्हें कभी कमी महसूस हुई इतना सब देने के बाद?
यही तो सबसे दिलचस्प बात है इसमें। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अपना सब कुछ दे देने के बावजूद उन्हें या उनके कार्यों को कभी कोई कमी नहीं हुई।
सच में?
बिल्कुल। उनका अपना गांव का घर तो कच्चा था, लेकिन बाद में वो जहां भी रहे अच्छे पक्के भवनों में रहे। और देखिए, उन्होंने गायत्री तपोभूमि, शांति कुंज, ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान, अखंड ज्योति पत्रिका का कार्यालय और देश विदेश में हजारों गायत्री शक्ति पीठ जैसे कितने बड़े बड़े संस्थान खड़े कर दिए।
हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। ये तो विशाल तंत्र है,
है ना? और एक और बात पर ध्यान दीजिए, इन सभी जगहों पर जो लोग काम करते थे, रहते थे पहले, सैकड़ों थे, बाद में हजारों हो गए, उन सबके खाने पीने रहने सबकी व्यवस्था भी लगातार होती रही।
ये कैसे संभव हुआ?
पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जब भी जरूरत पड़ती थी, ईश्वर कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में व्यवस्था कर देते थे। उनका ये पक्का विश्वास था कि ये बोने और काटने का जो नियम है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है।
अच्छा।
हाँ, ये हरेक के लिए, सबके लिए समान रूप से काम करता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, एक सार्वभौमिक नियम।
ये सोचना ही मतलब अविश्वसनीय लगता है कि सब कुछ दे दिया और फिर भी न केवल कमी नहीं हुई, बल्कि चीजें और बढ़ती गईं, संस्थाएं और बड़ी होती गईं। ये वाकई उनके विश्वास और उस सिद्धांत की शक्ति को दिखाता है।
बिल्कुल सही। तो सार यही निकलता है कि पूज्य गुरुदेव का जीवन खुद इस बात का सबूत है कि अपने संसाधन, चाहे वो समय हो, बुद्धि हो, भावनाएं हो या धन हो, अगर हम उन्हें निस्वार्थ भाव से परमार्थ में लगाते हैं, बोते हैं, और व्यक्ति न केवल किसी कमी या अभाव से मुक्त हो जाता है, बल्कि वो संसाधन कई गुना होकर लौटते हैं। यही उनके गुरु ने सिखाया था, समृद्धि और सफलता का सच्चा मार्ग।
और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये बोने और काटने का नियम, जैसा इस स्रोत में बताया गया है, ये कोई सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसे एक अटल सार्वभौमिक सिद्धांत की तरह बताया गया है, जो हमारे भौतिक जीवन पर भी उतना ही लागू होता है।
हाँ, और ये आज के युग में जहाँ हर कोई व्यक्तिगत संचय, मतलब पर्सनल एक्युमुलेशन पे इतना जोर देता है।
सही बात है, आजकल तो यही सोच है।
हाँ, तो ऐसे में ये सोचने पर मजबूर करता है कि भाई, अपने संसाधनों को सिर्फ अपने लिए बचाकर रखने के बजाय अगर उन्हें सामूहिक हित, समाज के लिए बोने का नजरिया अपनाएं, तो ये हमारे जीवन को, हमारे काम करने के तरीके को कैसे बदल सकता है।
ये वाकई एक गहरा विचार है, इस पर सोचना चाहिए।
बिल्कुल।
तो इस विचार के साथ ही आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।